नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाटली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, एरिक लिंगेल की फाउंडेशंस ऑफ गेम इंजन डेवलपमेंट वॉल्यूम 2 रेंडरिंग। वास्तविक समय त्रि आयामी गेम इंजन बनाने के लिए रेंडरिंग की बुनियादी प्रणालियों का तकनीकी अध्ययन है। यह श्रृंखला का दूसरा खंड है और गणितीय आधारों के बाद उस प्रक्रिया पर केंद्रित है जिसमें दृश्य की ज्यामिति, सामग्री, प्रकाश और कैमरा निर्देश अंततः स्क्रीन पर पिक्सेलों में बदलते हैं। पुस्तक का उद्देश्य किसी एक ग्राफिक्स एपीआई के आदेश याद कराना नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों को स्पष्ट करना है जो अलग अलग इंजन और एपीआई में लागू होते हैं। इसमें रंग विज्ञान, गामा करेक्शन, कोऑर्डिनेट स्पेसेस, प्रोजेक्शन, शेडिंग, छाया, दृश्यता और उन्नत प्रभावों की क्रमबद्ध चर्चा है। लैंगेन C++ और उच्च स्तरीय शेडर उदाहरणों के सहारे अवधारणाओं को कार्यान्वयन से जोड़ते हैं। यह पूर्ण आरंभिक पाठ नहीं है क्योंकि पाठक को गणित और प्रोग्रामिंग पढ़ने का आधार चाहिए, फिर भी इसका दृष्टिकोण स्थायी इंजन अवधारणाओं पर है। इसलिए यह उन डेवलपरों के लिए उपयोगी है जो तैयार इंजन चलाने के बजाय उसकी रेंडरिंग संरचना समझना या बनाना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले रंग विज्ञान और गामा करेक्शन से सही प्रकाशीय परिणाम की शुरुआत। पुस्तक रेंडरिंग को केवल त्रिभुज खींचने की समस्या नहीं मानती, बल्कि रंग के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और मानव दृष्टि के संबंध से आरंभ करती है। यह आधार आवश्यक है क्योंकि स्क्रीन पर संग्रहित रंग मान प्रायः रैखिक प्रकाश की मात्रा के समान नहीं होते। यदि बनावटों, प्रकाश गणनाओं और अंतिम प्रदर्शन के बीच गामा करेक्शन सही ढंग से न हो तो दृश्य अनावश्यक रूप से धुंधला, बहुत गहरा या अस्वाभाविक चमकीला दिखाई दे सकता है। इसलिए रंग स्थान और रैखिक कार्यक्षेत्र का चुनाव सामग्री निर्माण तथा प्रकाश गणना दोनों को प्रभावित करता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि रेंडरिंग पाइपलाइन के अलग चरणों में रंग डेटा का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। किसी बनावट का रंग, किसी नॉर्मल मैप का डेटा और प्रकाश गणना का परिणाम एक जैसे तरीके से नहीं संभाले जा सकते। इस भेद को समझे बिना तकनीकी रूप से सही लगने वाला शेडर भी गलत दृश्य परिणाम दे सकता है। लैंगेल की प्रस्तुति रंग संबंधी विषय को बाद की शेडिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग चर्चाओं से जोड़ती है। फलतः पाठक को यह समझ मिलता है कि विश्वसनीय दृश्य गुणवत्ता महंगे प्रभावों से पहले सही रंग प्रबंधन पर निर्भर करती है। दूसरा, कोऑर्डिनेट स्पेसेस और प्रोजेक्शन से त्रि आयामी दृश्य का स्क्रीन रूपांतरण। त्रि आयामी इंजन में हर बिंदु का अर्थ उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें उसे मापा गया है। पुस्तक मॉडल, विश्व, दृश्य और क्लिप जैसे कोऑर्डिनेट स्पेसेस के बीच रूपांतरण को रेंडरिंग पाइपलाइन का केंद्रीय ढांचा मानती है। किसी मॉडल को दुनिया में रखना, कैमरे के सापेक्ष देखना और अंत में उसे स्क्रीन पर प्रक्षेपित करना, इन चरणों में मैट्रिक्स रूपांतरणों की श्रृंखला काम करती है। यदि स्पेस का अनुशासन अस्पष्ट हो तो प्रकाश की दिशा, नॉर्मल, कैमरा स्थिति और छाया गणना में सूक्ष्म लेकिन गंभीर त्रुटियां आती है। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की चर्चा यह स्पष्ट करती है कि परिप्रेक्ष्य दृश्य में दूर की वस्तुएं छोटी क्यों दिखती हैं और दृश्य आयतन किन सीमाओं के भीतर रेंडर होना चाहिए। यह केवल कैमरा प्रभाव नहीं बल्कि बाद के फ्रस्टम कलिंग का आधार भी है। पुस्तक इस ढांचे को शेडिंग से जोड़ती है क्योंकि प्रकाश और सतह के संबंध की गणना प्रायः चुने हुए स्पेस में ही की जाती है। एपीआई विशेष कोड से दूरी रखने का लाभ यह है कि पाठक किसी एक लाइब्रेरी की परिभाषाओं के बजाय रूपांतरणों के पीछे का सामान्य तर्क सीखता है। यही समझ अलग इंजन संरचनाओं में कैमरा, वस्तु और प्रकाश प्रणालियों को व्यवस्थित रखने में सहायक होती है। तीसरा, सतह शेडिंग, नॉर्मल मैपिंग और पैरालेक्स मैपिंग का सामग्री आधारित भ्रम। पुस्तक की शेडिंग चर्चा यह दिखाती है कि रेंडरिंग में ज्यामिति और सामग्री अलग होते हुए भी गहराई से जुड़े हैं। बुनियादी प्रकाश मॉडल सतह के नॉर्मल, प्रकाश दिशा और दर्शक की दिशा के संबंध से फैलाव तथा चमक जैसे दृश्य संकेत निकालते हैं। इन संकेतों का उद्देश्य हर भौतिक घटना का पूर्ण अनुकरण नहीं बल्कि वास्तविक समय की लागत के भीतर पठनीय और सुसंगत दृश्य देना है। इसके आगे नॉर्मल मैपिंग कम बहुभुज वाली सतह पर सूक्ष्म उभार और खुरदरापन दिखाने का तरीका देती है। वास्तविक ज्यामिति बदले बिना प्रति पिक्सल नॉर्मल बदलने से ईंट, पत्थर या धातु जैसे पदार्थ अधिक विस्तृत प्रतीत होते हैं। पैरालेक्स मैपिंग इस भ्रम को आगे बढ़ाती है क्योंकि देखने की दिशा बदलने पर बनावट निर्देशांकों को समायोजित कर सतह में गहराई का संकेत बनाया जाता है। इन तकनीकों के लिए टेंजेंट स्पेस महत्वपूर्ण है क्योंकि बनावट में संग्रहित दिशा डेटा को मॉडल और प्रकाश के संदर्भ से सही मिलान चाहिए। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि यह प्रभावों को अलग शेडर नुस्खों की तरह नहीं रखती बल्कि स्पेस रूपांतरण, बनावट डेटा और प्रकाश गणना की संयुक्त समस्या के रूप में रखती है। पाठक इसलिए यह समझ सकता है कि अधिक विवरण का आभास कब सस्ता विकल्प है और कब वास्तविक ज्यामिति आवश्यक होगी। चौथा, प्रकाश स्रोतों और छायाओं में दृश्य विश्वसनीयता तथा गणनात्मक लागत का संतुलन। प्रकाश स्रोतों और छायाओं का उद्देश्य केवल दृश्य को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि वस्तुओं की दूरी, आकृति और स्थानिक व्यवस्था को समझने योग्य बनाना है। पुस्तक विभिन्न प्रकाश स्रोतों की भूमिका और सतहों पर उनके प्रभाव की बुनियादी संरचना समझाती है। छाया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बताती है कि कौन सी वस्तु प्रकाश रोक रही है और कौन सी सतह किसके सापेक्ष स्थित है। किंतु वास्तविक समय इंजन में छाया बनाना महंगा है, इसलिए तकनीक का चुनाव दृश्य की जरूरत, प्लेटफॉर्म और स्वीकार्य त्रुटियों के आधार पर होना चाहिए। पुस्तक में स्टेंसिल शैडोज भी शामिल है। वे आधुनिक हर परिस्थिति के लिए प्रमुख विकल्प नहीं माने जाते, फिर भी छाया आयतन और ज्यामितीय छाया निर्माण के सिद्धांत समझने में उपयोगी है। इस समावेशन से पुस्तक का चरित्र स्पष्ट होता है। यह केवल वर्तमान प्रचलन की सूची नहीं, बल्कि इंजन तकनीकों के काम करने के तर्क को प्रस्तुत करती है। प्रकाश और छाया की चर्चा कलिंग से भी संबंधित है, क्योंकि जिस प्रकाश या छाया का किसी दृश्य भाग पर असर नहीं पड़ता, उसकी गणना बचाई जा सकती है। इस प्रकार पाठक दृश्य गुणवत्ता और प्रदर्शन को विरोधी ध्रुवों के बजाय एक ही रेंडरिंग निर्णय के दो पक्षों के रूप में देखना सीखता है। अंत में दृश्यता, ऑक्लूजन और उन्नत प्रभावों से नियंत्रित रेंडरिंग कार्यभार। पुस्तक का दृश्यता अध्याय रेंडरिंग के सबसे व्यावहारिक प्रश्न पर केंद्रित है। स्क्रीन पर वास्तव में क्या भेजना चाहिए? किसी बड़े दृश्य की हर वस्तु को हर फ्रेम रेंडर करना संसाधनों की बर्बादी है, खासकर जब बहुत सी वस्तुएं कैमरे के बाहर या दूसरी वस्तुओं के पीछे हों। पॉलीगॉन क्लिपिंग, बाउंडिंग स्फीयर और बॉक्स, फ्रस्टम कलिंग, पोर्टल सिस्टम और ऑक्लूडर जैसी विधियां इसी अनावश्यक कार्य को घटाती है। इनके पीछे क्रमिक जांच का विचार है। पहले सरल और सस्ते अनुमान से वस्तु को हटाने योग्य है या नहीं तय किया जाए, फिर केवल आवश्यक स्थिति में अधिक महंगी जांच की जाए। पोर्टल आधारित संरचना बंद या खंडित स्थानों में विशेष उपयोगी हो सकती है, जहां क्षेत्र और उनके दृश्य मार्ग स्पष्ट हों। पुस्तक इसके बाद डीकल, बिलबोर्ड, वॉल्यूमेट्रिक प्रभाव, एम्बियंट ऑक्लूजन, वायुमंडलीय छायांकन और मोशन ब्लर जैसे उन्नत प्रभावों तक जाती है। ये प्रभाव दृश्य को जानकारी और वातावरण देते हैं, पर उनका मूल्य तभी है जब आधारभूत दृश्यता व्यवस्था नियंत्रित हो। इस क्रम से पुस्तक एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सिद्धांत स्थापित करती है। पहले यह सीमित करें कि क्या रेंडर होगा, फिर चुनी हुई सामग्री और प्रभावों को कुशलता से लागू करें। निष्कर्ष में फाउंडेशंस ऑफ गेम इंजन डेवलपमेंट वॉल्यूम 2 रेंडरिंग उन प्रोग्रामरों, तकनीकी कलाकारों और इंजन डेवलपरों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास त्रि आयामी गणित, C++ या समान प्रोग्रामिंग तथा शेडर की बुनियादी परिचितता है। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति रंग प्रबंधन से लेकर कैमरा प्रोजेक्शन, सतह विवरण, छाया और दृश्यता तक रेंडरिंग के परस्पर जुड़े निर्णयों को एक व्यवस्थित ढांचे में देख सकता है। कस्टम इंजन बनाने वाले पाठक के लिए इसका लाभ सीधे वास्तुकला संबंधी है। वे समझ सकते हैं कि कौन सी प्रणाली किस सूचना पर निर्भर है और प्रदर्शन बचाने के लिए किस चरण में काम घटाया जा सकता है। तैयार इंजन उपयोग करने वाले अनुभवी डेवलपर के लिए भी यह उपयोगी संदर्भ हो सकती है, क्योंकि इंजन के भीतर छिपे रेंडरिंग विकल्पों का तर्क अधिक स्पष्ट होता है। पुस्तक की अलग पहचान इसका API निरपेक्ष दृष्टिकोण है। बहुत सी ग्राफिक्स पुस्तकें किसी विशेष API संस्करण, इंजन या तात्कालिक शेडर प्रवृत्ति से बंधी होती है। लैंगलिस के बजाय लंबे समय से उपयोगी सिद्धांतों, साफ चित्रों और कार्यान्वयन उन्मुख उदाहरणों पर जोर देते हैं। यही कारण है कि इसमें हर नवीनतम तकनीक या अत्यधिक अनुकूलित शेडर नुस्खा नहीं मिलेगा। जो पाठक अत्याधुनिक शोध या विशिष्ट GPU प्रोग्रामिंग समाधान चाहते हैं, उन्हें इसे पूरक स्रोतों के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन रेंडरिंग की स्थायी बुनियाद और विशेष रूप से दृश्यता तथा ऑक्लूजन की सुसंगत समझ के लिए यह अपनी श्रेणी में विशिष्ट है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एरिक लैंगियल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।